Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उस ब्रह्माकार वृत्ति में जो परमात्मा विभक्त हो जाएंगे उसी का नाम क्या है? ज्ञानाग्नि. ज्ञानाग्नि उसी ज्ञानाग्नि से क्या हो जाएगा? इस सारा संसार का सारा संसार भस्मीभूत हो जाएगा. ब्रह्मरूप हो जाएगा. जैसे यज्ञ में समस्त हवि पदार्थ अग्निरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर अध्यात्म क्या है? उस ज्ञानाग्नि में सारा संसार भस्मीभूत हो जाएगा, सब ब्रह्मरूप हो जाएंगे. ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा. यह जो है ज्ञानाग्नि है. देखो तो इसमें दृष्टांत देते हैं कि गर्भ इव सुवृत गर्भणी भी. तो जैसे गर्भणी माँ गर्भ को धारण करके रखती है, संयम बना करके रखती है ना? तो पिता के द्वारा प्रदत्त जो शक्ति है, वीर्य शक्ति है, उससे जो गर्भ होता है उसको माता संयमित हो करके धारण करती है. इसमें बाह्य कोई संस्कार ना हो, इसलिए जो अनुकूल भोजन पानी पान आदि करना पड़ता है ना? इसी प्रकार जो पिता यहाँ पर कौन है? गुरु पिता है ना? इस अध्यात्म मार्ग में हमारा पिता कौन है? गुरु है ना? गुरु भी जो है ना, ये वीर्य शक्ति को छोड़ता है शिष्य में, शिष्य के अंतकरण में छोड़ेगा. वो क्या शक्ति है? ये उपदेश जो है ना, वेदांत का उपदेश, वेदांत का जो मंत्र है तत्त्वमसि आदि हो गया ना, ये उपदेश जो है ना, ये उपदेश को धारण करता है शिष्य है ना, शिष्य रूपी माता है ना. आ धारण कर लिया और फिर मनमानी करेंगे भाई है ना, तो बाहर का संस्कार भी आ जावे अनात्मा संस्कार, तब तो ये ज्ञान रूप से प्रकट नहीं होने वाला है ना. तो माता जैसे बाहर संस्कार से दूर रखती है, अन्नपान और प्रतिकूल अन्नपान आदि से अपने को दूर रखती है, उसी प्रकार साधक को भी क्या करना चाहिए? साधक रूपी माता को अच्छे संघ में रहना चाहिए है ना. वेदांत की चर्चा ही जो है सुन करके उसका मनन करता रहे. पहले श्रवण कर लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? मनन करो, निध्यासन करो, तब जाकर ब्रह्माकार वृत्ति होगी. ब्रह्माकार वृत्ति ना हो तो ब्रह्म का तो आप उपदेश तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा का अभिव्यक्त होने वाला नहीं है, वृत्ति नहीं हो सकती है. तो इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो ज्ञानाग्नि है ना, परमात्मा जो अभिव्यक्त ज्ञानाग्नि, इसको संभाल कर रखना पड़ता है. और इसकी स्तुति करते हैं. देखो भूताग्नि की स्तुति करते हैं जागिंग लोग, और वो जो अभिव्यक्त परमात्मा है उसकी स्तुति करते हैं जोगी लोग. ये कह रहे दिवे दिवे इद्य, प्रतिदिन उसकी स्तुति की जाती इद्य स्तुत्य है ना. जागृवत भी है ना, संयमित होकर के, सचेत होकर के, प्रमाश रहित होकर के, जो हविष्मत भी यज्ञ करने वाले जो मनुष्य है उस अग्नि की स्तुति करते हैं. तो वो परमात्मा ही ज्ञानाग्नि रूप से प्रकट हो जाता है, और यज्ञ करने वालों के लिए भूताग्नि के रूप से प्रकट हो जाता है. तो वही परमात्मा है. तो वही एतद वही तत्व, वही परमात्मा तत्व तो है. और भी देखो तो उसी परमात्मा में सूर्य भी उदय होता है, लय भी उसी में होता है. उसको आगे कह रहे यतश्चोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास तदो नात्येति कश्चन एतद्वैत. परमात्मा सर्वात्मक है, वही अधिष्ठान है सबका। केवल हिरण्य गर्भ का अधिष्ठान नहीं है, ये सूर्य का भी अधिष्ठान देखो। इसलिए यतः जो परमात्मा हिरण्य गर्भ रूप से प्रकट हो गए, उस परमात्मा स्वरूप हिरण्य गर्भ से, यतः का अर्थ प्राणात्मक हिरण्य गर्भ से, परमात्मा स्वरूप हिरण्य गर्भ से सूर्य जो है उदय होता है, और जहां से उदय होगा और अस्त भी कहां होगा, दूसरी जगह में होगा क्या, उसी में होगा। घड़ा का उदय हुआ मिट्टी से, लय कहां पर होगा, उसी में होगा, मिट्टी में होगा, है ना। तो उपादान से कार्य प्रकट होता है, लय भी होगा उपादान से, इसी का नाम उपादान है, है ना। तो निमित्त में तो ऐसा नहीं होता है, निमित्त हो गया आपका कुलाल घड़े का, और निमित्त कार्य होने के बाद निमित्त रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं, समझ गए ना। घड़े का बना दिया और कुलाल का राम नाम सत्य हो गया, तो घट रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, घट तो रहेगा, समझ में ना। लेकिन उपादान ऐसा है कि उपादान यदि ना रहे तो कार्य नहीं रह सकता। तो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया तब भी मिट्टी है कि नहीं भैया, मिट्टी तो रहेगा, मिट्टी तत्व रहेगा, मिट्टी तत्व सत्ता के बिना घर के कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हो सकती, है ना। तो ये है उपादान। यत्र जगच्छति उसी परमात्मा स्वरूप हिरण्य गर्भ में सूर्य का अस्त भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों भाई, कहते हैं तम देवा सर्वे अर्पिता, कि सारे जितने भी देवता है उसी में अर्पित है। श्रीमद् भगवान भाष्यकार कहते हैं जैसे रात की नाभि में ये जो औराए होते ना लकड़ी, वो जैसे अर्पित है, औराए जैसे रात की नाभि को नहीं छोड़ सकती है, अधिष्ठान ना वो, है ना। इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप जो हिरण्य गर्भ है वो हो गया अधिष्ठान, किसका, स्थूल का। सूक्ष्म का सूक्ष्म अधिष्ठान होता है स्थूल का, है ना। इसलिए स्थूल सूक्ष्म से प्रकट होगा, है ना, पंचीकृत तन कहते ना, पंचीकृत पंच महाभूत, वो जैसे तन्मात्रा से होगा उत्पन्न, लय भी कहां पर होगा, पंच तन्मात्रा में होता है। ये कहते हैं ये उपाधि किसकी है, हिरण्य गर्भ की, हिरण्य गर्भ की है, है ना। ये तो लय है, लय लय लय, तो लय जो होता है ना भाई, ये तो उपादान में होता, उपादान में होता है, है ना। लेकिन आत्यंतिक जो प्रलय होता है, आत्यंतिक प्रलय में ऐसा नहीं होता है, है ना। जिस व्यक्ति को सर्वम खलेदम ब्रह्म और वही ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, ये सारा का सारा संसार जो है किसमें लय होगा भाई, ब्रह्म में लय होगा, ये आत्यंतिक प्रलय है ना। ज्ञान होने के बाद आत्यंतिक प्रलय होता है। तो अधिष्ठान जो परमात्मा वही है, एतद वैत तो नात्यति कश्चन, उसका अतिक्रमण, कार्य कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा स्वरूप जो हिरण्य गर्भ है, ये स्थूल का क्या हो गया, कारण हो गया। इसलिए हिरण्य गर्भ को भी परमात्मा स्वरूप बताया। अच्छा, तो ज्ञान करना है अपने स्वरूप का, है ना। साक्षी चेतन जो है, वो साक्षी चेतन सब समस्त जगत का जो साक्षी चेतन है, वो साक्षी चेतन मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान करना है। ये ज्ञान जब तक नहीं है तो अविद्या अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है, है ना। परमात्मा सामने खड़ा भी हो गया तब भी आप यदि आत्मरूप से नहीं जाना, द्वैत रूप से जाना, तो आपने जाना नहीं, नजदीक से जानना चाहिए परमात्मा को। ये आगे का प्रकरण है देखो। यदेव तत् अमूत्र, यत् अमूत्र तत् अन्निह, मृत्युः स मृत्युः प्राप्नोति, यह नानेव पश्यति। तो कहते हैं क्यों ऐसा कहने जा रहे हैं? तो आनंदगिरी महाराज कहते हैं, भाई आप तो केवल कहने के लिए कहते हैं, ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे वेदांत है, ये चारवाकों का कहना ये है ना। ये जो है लोगों को प्रसन्न करो, और जो है जो पैसा कहाँ से आवे, जैसे कर्मकांडी लोग करते हैं भैया, आप ही ऐसे करते हो, ये सर्वे लोगों का कहना है ना। ये तो ब्रह्म सर्वात्मा है, वही बनाता है और बनता भी वही है, और जानने वाला भी वही है, ये बात तो धंसती नहीं है, है ना, ये कह सकते हैं। तो कहते हैं ये संसारी पना जो है जीव के है ना, ये तो उपाधि के उपाधि, तुम थोड़ा अपनी उपाधि को छोड़ करके देखो तुम्हारा स्वरूप क्या होगा, है ना। उपाधि में ही हमेशा यदि अहमता करते हैं तो आपने असली स्वरूप को जाना कहां। इसलिए कह रहे यहां पर आगे, यह 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 से कहलाना है जो उपादान कारण है, जगत का जो परिणामी उपादान कारण है कौन है जी? माया। माया जगत का परिणामी उपादान कौन है? माया है, है ना। अभिपर्द उपादान तो भाई ब्रह्म है, है ना? तो जगत का जो परिणामी उपादान है माया, उस माया में जो प्रतिबिंबित चेतन है जिसका नाम क्या है? ईश्वर। ईश्वर है ना। तो माया उपाधि में रहने वाला जो चेतन है ना, तो माया को छोड़ने पर क्या होगा भाई? शुद्ध रहेगा कि भाई जो है निर्विशेष रहेगा कि सविशेष रहेगा? उपाधि को छोड़ने पर थोड़ी सविशेष होगा, वो तो निर्विशेष ही होगा ना, है ना। तो माया विशिष्ट चेतन में जो शुद्ध चेतन है उसका स्वरूप है ना, तत् अमूत्र। अमूत्र कहने से माया विशिष्ट चेतन में रहने वाला जो चेतन है, वो जो चेतन है यत् तत् अन्विह। ये देखो यह मतलब कहां, ये अंतकरण में जो भास रहा है चेतन, अंतकरण छोड़ने पर जिसको छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे छोड़ते जाएंगे, कोई शेष रहेगा कि नहीं भाई? जरूर तो कोई रहेगा, छोड़ने वाला रहेगा भाई, छोड़ने वाला रहेगा है ना। और छोड़ने की क्रिया को भी छोड़ो, आगे समझ में है ना। बड़ी बड़ी कठिनाई कहां पर होती है ना? बड़ी कठिनाई तो ये हो जाती है, आपने सबको छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया और छोड़ने का अभिमान हो गया, अब क्या करोगे, है कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े महात्मा को भी किसका अभिमान हो जाता है? छोड़ने का। ज्ञान तो आगे की बात है, त्याग का अभिमान हो जाता है। वास्तविक त्याग तो यही है, त्याग के अभिमान को भी त्यागना चाहिए, आगे समझ में। तो इसी प्रकार से ये जो क्रिया है ना, किसी भी क्रिया ना हो, बस सभी क्रिया को आप दृश्य कोटि में डालते रहो, दृश्य कोटि में है ना, तो आप क्या हो जाएंगे? दृष्टा हो जाएंगे है ना। और दृष्टा में जो दृष्टित्व है ना, वो भी दृश्य को लेकर के, आगे समझ में है ना। आप अपने आप को दृष्टा दृष्टा क्यों कहते हैं? दृश्य को लेकर आप दृष्टा बोलते हैं भैया, समझ में है कि नहीं। और आपको यदि ये मालूम पड़ जावे कि दृश्य की सत्ता दृष्टा की सत्ता से भिन्न नहीं होती है, क्षेत्र की सत्ता क्षेत्रज्ञ सत्ता से भिन्न नहीं होती है, तो आपका नाम क्षेत्रज्ञ होगा? आपका नाम दृष्टा होगा? नहीं हो सकता है, आगे समझ में। इसी का नाम क्या है? निर्विशेष, ये शुद्ध चेतन है ना। ये देखो कह रहे हैं, देखो भैया यह यदेव, यह कहने से जीव की उपाधि, श्लोक में देखो ये जीव की उपाधि में रहने वाला जो शुद्ध चेतन, यत् यत् शुद्ध चैतन्यम तत् अमूत्र, माया रूपी उपाधि में जो है चेतन वो तो वही है, दोनों एक हो गए। देखो उल्टा कह रहे हैं फिर, अमूत्र यत् मायारूपी उपाधि में रहने वाला जो चेतन है, यत चेतन्यम शुद्ध चेतनम मायारूपी उपाधौ तत् अन्यः, इसी अंतकरण रूपी उपाधि में प्रविष्ट हो गया है। इसी का नाम क्या है? व्यतिहार उक्ति। इसको क्या बोलते हैं? व्यतिहार उक्ति। उधर से एक बार कह दिया और इधर से एक बार कह दिया। मायारूपी उपाधि में जो चेतन है वो चेतन यहाँ पर भास रहा है, और अविद्या अथवा अंतकरण रूपी उपाधि में जो चेतन है यही चेतन माया रूपी उपाधि में भास रहा है। अब क्या हो गया? दोनों का स्वरूप एक हो गया। देखो, लेकिन ये एक ज्ञान तब होगा जब उपाधि को छोड़ेंगे। तो उपाधि उपाधि निमित्तक जितने व्यवहार है ये सब छोड़ेंगे तब ये भान हो सकता है। ये होगा अद्वैत। देखो अब कहते हैं यही अद्वैत ही पारमार्थिक है, उसी अद्वैत में द्वैत भास रहा है। भाई तार्किक लोग बोलते हैं, द्वैतवादी लोग बोलते हैं, भाई अद्वैत में द्वैत कैसे रहेगा? बड़ी विलक्षण है कि नहीं है? अद्वैत तो आप तो भाई कुछ भी कहते हो, अद्वैत भी है द्वैत भी है। तो कहते हैं हम अद्वैत भी है द्वैत भी है। भाई अद्वैत हम किसको लेकर कह रहे हैं? केवल जो शुद्ध चेतन है, लक्षार्थ जो है उपाधि को छोड़ने पर, उसमें हम अवैध कहते हैं। विशिष्ट चेतन में हम अवैध नहीं कहते। अब विशिष्ट चेतन क्या हो गया? कल्पित हो गया। भाई विशिष्ट चेतन कैसा हो गया? कल्पित हो गया है ना। और अद्वैत कैसा हो गया? पारमार्थिक हो गया। तो पारमार्थिक का विरोध कहां कल्पित के साथ? पहले भी आप लोगों को बता दिया कि पर्दा है पारमार्थिक, ओके कि नहीं? और अग्नि जो भास रही है, जल जो भास रहा है वो कैसा है? कल्पित है। वो कल्पित अग्नि का विरोध है क्या पर्दा के साथ? कहां विरोध है? ये समता होती है अद्वैत पर्दा में, और विषमता कहां है? चित्र में, द्वैत में है ना। तो विषमता कल्पित है और समता पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक समता के साथ कल्पित विषमता का क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं होता है। इसी प्रकार जो आत्मरूपी जो दर्प आत्मरूपी जो पर्दा है ना, शुद्ध ब्रह्म है, लक्षार्थ है, उसमें है समता अद्वैत। इसलिए पारमार्थिक अद्वैत के साथ एक कल्पित द्वैत का काय को विरोध होगा है ना। लेकिन इसको जो सत्य समझता है द्वैत को, चित्र को, तब क्या होगा? देखो कह रहे आगे, मृत्यो स मृत्युम आपनोति य इह नाने अपश्यति। इह इह अद्वैत ब्रह्मणी है ना। इह इदम शब्द से यह हो गया। कई ब्रह्म कैसा है? यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है ना। ये जो ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष है, इस साक्षात अपरोक्ष अद्वैत ब्रह्म में जो द्वैत को देखता है, यहां पर भगवान भाष्यकार कहते हैं यदि द्वैत पारमार्थिक होता, हो गया कि नहीं? द्वैत यदि पारमार्थिक होता तो निंदा क्यों करती श्रुति? पारमार्थिक तत्व की निंदा नहीं होती है, पारमार्थिक तत्व को देखने वाले की निंदा नहीं होती है। यहां पर द्वैत को देखने वाले की निंदा की जा रही है। तो निंदा की जा रही है, निषिद्ध की निंदा की जाती है। आगे समझ में? निषिद्ध की निंदा की जाती है, और विहित जो होती है जिसका विधान किया जाता है उसकी स्तुति की जाती है। ये नियम है कि नहीं भैया? है ना। तो यहां पर भगवान भाष्यकार कहते हैं संसार में यदि द्वैत पारमार्थिक होता तो पारमार्थिक द्वैत को देखने वाले की निंदा नहीं होती है। ये जो है ये क्या बोलते हैं? अन्यथा नापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण। निंदा हो रही है इसलिए द्वैत पारमार्थिक नहीं है, इसको कल्पित समझ लो है ना। इसलिए यहां पर कहते हैं यह इस अद्वैत ब्रह्म में जो नाना को देखती है, नाना मतलब द्वैत, द्वैत है ही नहीं है, इसलिए श्रुति बोलते इव है ना। द्वैत है ही नहीं लेकिन भासता है, ओके कि इसको जो वास्तविक देखता है क्या होगा? अज्ञान का फल, द्वैत बुद्धि का फल। सद्वैत ज्ञानी सत्य बुद्धिमान, सत्य बुद्धि रखने वाला मृत्यु हो मृत्युम आपनोति, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेगा। मृत्यु क्या है? इस शरीर में अहमता कर लेना है ना। ये जो खूंट है, ये मनुष्य शरीर, पशु शरीर, ये खूंट है, इसी में जो रस्सी लग जाना, बस इसी को मैं मान लेना, यही मृत्यु हो गई। ये खूंट बदलता रहता है, रस्सी तो वही है बस, है ना। तादात्म्य जो है, आत्मा अनात्मा का तादात्म्य, ये होगी रस्सी, है ना। तो जिसको ज्ञान हो गया पारमार्थिक का, उसको द्वैत दिखेगा कि नहीं भैया? द्वैत तो दिखेगा, है ना, द्वैत तो दिखेगा। भाई मान लो सामने जो घड़ा है ना, गाय का दूध है, तो ज्ञान हुआ तो क्या सफेद दिखेगा कि काला दिखेगा दूध? ज्ञानी को भी, ज्ञानी को भी सफेद दिखेगा, आप चाहो या ना चाहो। ज्ञान की ऐसी महिमा होती है, वस्तु सामने हो, आपकी इंद्रिया सामने हो और मन समाहित हो, तो आप चाहो या ना चाहो ज्ञान तो हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष कहो अपरोक्ष कहो एक ही बात है, पकड़ में आया ना, ऐसा है। इसलिए संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादिना, कुमार भट्ट कहते हैं, वस्तु सामने हो, चक्षु का संबंध हो, मन समाहित हो, तो आप चाहो या ना चाहो, ओके नहीं? ये ज्ञान का महिमा। ज्ञान किसके अधीन? वस्तु के अधीन। वस्तु तंत्रम भवेज ज्ञानम, ज्ञान किसके अधीन है भैया? वस्तु के अधीन। और कर्तृतंत्रम उपासनम, ये कर्म है, उपासना ये आपके अधीन नहीं है, ये आपके अधीन है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारी इच्छा नहीं है जो उपासना नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। हमारी इच्छा नहीं है इसलिए माता पिता की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो आपकी माँ जैसी हो, हाँ, चाहे काणी हो, कैसी हो, उसकी उपासना करेंगे तब आपको फल मिलेगा। लेकिन पड़ोस के जो जो माता है बहुत सुंदर है, उसकी पूजा करेंगे तो फल मिलेगा आपको। तो आपकी माँ कैसी हो, उसकी पूजा करने से फल मिलेगा। हमारी इच्छा नहीं है, उनकी पूजा करने की इच्छा है पड़ोसन की, तो फल मिलने वाला नहीं है। है ना, ये तात्पर्य है। देखो तो क्या हो गया कि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी को द्वैत तो दिखेगा, समझे ना। द्वैत दिखने पर भी ये द्वैत वास्तविक नहीं है, द्वैत तो कल्पित है। और किस में कल्पित है? मेरे में कल्पित है, अधिष्ठान में। हाँ, स्मरण तो होगा, समझ में कि नहीं, संस्कार भी रहेगा। मान लो जब ये सपने में आप देखते हैं तो उठने के बाद संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जिस समय आप सो करके देख रहे हैं सपन में, उस समय कैसा लग रहा है? सत्य लग रहा है। इसी भी अगर जागृत में जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है, अभी भी माया में सो करके देख रहे हैं, सो करके। इसलिए अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्ध, तो अनादि माया जो निद्रा है ना, उसमें सो रखा है और देख रहा है, सत्य समझ रहा है अज्ञानी। आप जग गया तो कहां पर जग जाएगा? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तथा। जब अद्वैत जो है परमात्मा है, उसमें जब जग गया, कैसे जग जाएगा? है ना, ज्ञान से जगेगा, कैसे जगेगा? और जगाने वाला कौन है भैया? गुरु जगाएगा, है ना। गुरु तब जगाएगा है जब आपको जगने की तड़पन हो, इच्छा हो जाएगी, समझे कि नहीं। जब तड़पन की इच्छा हो जाएगी तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब ज्ञान नेत्र जब खुल जाएगा तो माइक नेत्र बंद हो जाएगा। अभी माइक नेत्र है कि नहीं? ये माइक नेत्र जो पर्दा डाल रखा है परमात्मा का साक्षात्कार के लिए, ये पर्दा हो गया, पर्दा हो गया, है ना। और जो परमात्मा को साक्षात करने की जब तड़पन इच्छा हो जाएगी, परमात्मा की कृपा जब हो जाएगी, है ना, ये माइक नेत्र जो है रहेगा तो, नहीं रहेगा ऐसे भी नहीं, लेकिन प्रतिबंधक और नहीं होगा। जैसे भगवती सीता को, हाँ, भगवान राम को देखने की जब प्रबल इच्छा हो गई, तो प्रतिबंधक क्या था? उन्मेष निमेष उन्मेष क्रिया जो हो रही है पलक में है ना, ये प्रतिबंधक है कि नहीं? भगवान राम को देखने के लिए प्रतिबंधक है निमेष उन्मेष क्रिया करने वाला पलक, साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो भगवान राम को देखने की जो प्रबल इच्छा हो गई भगवती सीता को, भगवान ने इसको रोक दिया, पलक को रोक दिया, अब रुक जाओ तुम है ना। इसलिए सीता माया कैसे निहारती है, निमेष उन्मेष से विवर्जित जो नयन है, तो निमेष उन्मेष से विवर्जित चक्षु से भगवती सीता जैसे भगवान राम को देखती है, निरंतर देखती है, हो गया कि नहीं? इसी प्रकार जब जिसका ज्ञान नेत्र जब खुल जाएगा तो कि भले ही संसार दिखे ज्ञानी को, नाम रूप दिखे, फिर भी ये प्रतिबंधक नहीं होगा, इसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं हो सकती। तो सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी तो कल्पित बुद्धि होगी, तो निरंतर परमात्मा का साक्षात्कार होगा कि नहीं ज्ञानी को, है ना? ऐसा नहीं कि भाई अभी पुस्तक खोल रहे हैं तब जाकर के ज्ञान होगा, पुस्तक बंद कर देंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, है ना? इसलिए जब तक आपको अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो रहा है, दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति, इसको कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति, इसका फिर विचार करेंगे। दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति जब तक नहीं हो रहा है तब तक इसी में लगते रहना चाहिए, श्रवण मनन निध्यास में लगते रहना चाहिए। ऐसा ये नहीं समझना है ना कि जो हम वेदांत की अभी चर्चा कर रहे हैं सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा तो माया चली गई, ऐसा नहीं समझना है। तो माया वहां पर खड़ी रहती है गेट के बाहर गेट के बाहर, पुस्तक बंद करने पर भी जो है माया फिर पकड़ लेगी, है ना? इसलिए भ्रांति नहीं रखना है कि जो है हम लोग वेदांत का श्रवण करते हैं तो माया चली गई, ऐसा नहीं। बस इतने में रखते हैं, आगे का विचार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।